स्त्री पुरुष के टूटन और अकेलेपन का बोध। मानव संबंधों का सूक्ष्म दृष्टा राकेश के कहानियों में संबंधों की कटुता और विषमता को व्यक्त करते करते जब तनाव के चरम क्षणों तक पहुंचा तो उसमें अकेलेपन का बोध जागा। उसके पात्र टूटे हुए व्यक्तित्व को लेकर अजनबियत और ऊब से भर उठे। यह सब अचानक घटित नहीं हुआ, न इसके पीछे संबंधों की विषमता थी जिसने इन्हें यहाँ तक का रास्ता दिखाया। राकेश की कुछ एक कहानियों में आज के संदर्भों में अकेले पड़ते मानव मन और उसके व्यक्तित्व को पृष्ठ 83 रूपायित किया गया है। अकेलेपन का बोध इतना बढ़ता गया कि पात्रों की टूटन और विखंडित स्थितियां भी सामने आई। व्यक्ति का यह अकेलापन केवल वैयक्तिक नहीं है, वह तो सामाजिक जीवन के बीच संघर्षों से लुटते पिटते और टूटते बिखरते पात्रों का अकेलापन है। यह टूटन स्त्री और पुरुष दोनों के जीवन में दिखाई देता है। दुनिया के झमेले में पड़ी हुई मजबूरियों की वैसाखियों के सहारे चलने वाली और अपनी नियति में जीवन से जुड़े रहने की विवशता को पोसती हुई नारी जहां भीतर से टूटी बिखरी है, वहीं उसके मन पर अकेलेपन की मानो बोझ भी आ पड़ी है। यही स्थिति पुरुष की है, वह भी जिंदगी की दौड़ में हार गया है, फलतः टूट गया है और टूटकर एक अवश व्यर्थता बोध से भर गया है। राकेश की अनेक कहानियां ऐसे ही टूटे हुए पुरुषों की और बिखरी हुई नारियों के अकेलेपन व्यर्थता बोध और यंत्रणा बोध को उजागर करती हैं। ऐसी कहानियों में आखिरी सामान, सुहागिने, जख्म, आदमी और दीवार, मिस्टर भाटिया, वारिस, शिकार, जीनियस, फटा हुआ जूता, दोराहा, धुंधला द्वीप, मिस पाल, पांचवे माले का फ्लैट और उर्मिल जीवन व कटे हुए पतंगे आदि की गणना की जा सकती है। ये वे कहानियां हैं जिनमें निरूपित स्त्री पुरुष परिवेश का दबाव सहते सहते और लुटते पिटते जिस बिंदु पर आ खड़े होते हैं वहां उनके पास अकेलेपन की पीड़ा के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है। इनमें आए पात्रों का संघर्ष ऊपर कम भीतरी अधिक है। यही कारण है कि इनके जख्म गहरे हैं, इनकी पीड़ा इन्हें छीलती है और ये भटकते भटकते अपने अकेलेपन में आकर ठहर गए हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन व्यक्तियों में बाहरी परिस्थितियों के दबाव के समक्ष विवश होकर टूटा हुआ मन है। उसमें एक फ्रस्ट्रेशन आ गया है, वह टूट गया है और उसका अपनी टूटन को बाहरी दुनिया में भरने का प्रयास भी निरर्थक होता चला गया है। उदाहरण के लिए कुछ कहानियां लीजिए। पहले मिस्टर भाटिया को ले। मिस्टर भाटिया के भाटिया की भद्रता का परिचय केवल मिस्टर या एस्क्वायर द्वारा ही दिया जा सकता है। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, किंतु लड़कियों में उसकी रुचि बहुत है। वह खाने से अधिक लेटर पैड को महत्व देता है। वह बीएससी तथा लॉ में 2 बार फेल हो चुका है और अक्सर बेरोजगार रहता है। बेरोजगारी में भी उसे रेस का बहुत शौक है। यद्यपि न उसने 5 साल से कमरे का किराया दिया है न होटल वाले का बिल, रेस कोर्स में वह लीला के साथ रोमांस के चक्कर में अपनी सब पूंजी हार आता है। फिर भी उसके भाई के निमंत्रण पर उनके यहाँ खाना खाने जाता है। लौटकर वह बहुत से हवाई किले बनाता है। उसका ख्याल है कि कुछ ही वर्षों में वह बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, किंतु कैप्टन केशव के तबादला हो जाने पर उसका ताश का महल पृष्ठ 84 ढह जाता है। बेरोजगारी की हालत में उसे अपनी किताबें तक बहुत सस्ते दामों में बेचनी पड़ती हैं। अपने फ्लैट की पगड़ी 5,000 लेकर उसे भी फूंक देता है। वह एक साधारण सी लड़की से विवाह करने को तैयार हो जाता है क्योंकि वह दहेज में 3,000 रुपये लाएगी जिन्हें वह रेस में लगा सकेगा। पूरी कहानी को पढ़कर जिस बेकार भटके हुए नौजवान की तस्वीर उभरती है वह उन लोगों से परिचय कराती है जो अपने परिवेश एवं समाज से कटकर जीने का प्रयास कर रहे हैं। भाटिया एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने अकेलेपन में भी जिजीविषा लिए हुए है। हाँ, यह बात अलग है कि उसकी यह जिजीविषा काल्पनिक हवाई व्यर्थता बोध से पीड़ित और गलत फहमियों से अपनी पीड़ा को ढकने वाली है। यही कारण है कि वह भीतर ही भीतर टूट गया है, किंतु टूटन का को अस्वीकार सारे संदर्भ को यथार्थ से जोड़ देता है। फटा हुआ जूता के राय की समस्या भी आर्थिक अभाव से जुड़ी हुई है। समाज में वह सर्वत्र उपेक्षित सा रहता है, उसे नौकरी नहीं मिलती और पहेलियां भरकर और कहानी लिखकर जीवन यापन का निश्चय करता है, जैसे इनके द्वारा जीवन सरल कार्य हो। उसे एक पहेली पर 30 रुपए का पुरस्कार मिलता है। वह उन रुपयों से कभी जूते खरीदना चाहता है, कभी पैंट बुशर्ट और कभी किसी रमणी के साथ कुछ समय अच्छी प्रकार गुजारना चाहता है। पैसों के पास होते ही उसे बहुत सी जरूरतों का ध्यान आता है। वह सब दुकानों पर जाकर भी कुछ नहीं खरीदता। रेस्टोरों में एक नवयुवती का साथ पाकर भी उसे छोड़कर बाहर आ जाता है। इस कहानी में राकेश ने आर्थिक अभावों से पीड़ित युवक के मनोविज्ञान का वर्णन बहुत सफलतापूर्वक किया है। राय में भी व्यर्थता बोध और अकेलेपन का बोध गहरा है। जहां राय की यह स्थिति है, वहां शिकार का पटवर्धन आर्थिक अभाव के कारण जेबें काटता है, किंतु उसमें मानवीयता की भावना अभी मरी नहीं है। वह काम की तलाश में आए एक नवयुवक की जेब से उसका बटुआ उड़ा लेता है, किंतु उसे परेशान देखकर उसका मन चाह रहा था कि जिंदगी लौटकर कुछ मिनट पहले के उस मुकाम पर चली जाए जब उसके चारों तरफ भीड़ का दबाव बढ़ रहा था, पर उसका हाथ अभी नवागंतुक की जेब तक नहीं पहुंचा था। किंतु वह दौड़कर गाड़ी पर चढ़ जाता है, मगर अब उसका मन चाह रहा था कि जिंदगी लौटकर उस मुकाम पर चली जाए जब गाड़ी का आखिरी डब्बा निकल रहा था और वह अभी प्लेटफार्म पर ही था। 2 नोट, 1 वारिस शिकार कहानी पृष्ठ 129, 2 वही पृष्ठ 129। पृष्ठ 85। कहानी का यही मोड़ उसे आदर्शवाद से बचाकर यथार्थ की भूमिका पर प्रतिष्ठित करता है। मनुष्य की अधिकांश बुराइयों की उत्तरदायी उसकी परिस्थितियां ही हैं। भूख की आग सारे मानव आदर्शों को निगल जाती है। जीनियस उस व्यक्ति की कहानी है जो हर दृष्टि से साधारण है, लेकिन स्वयं को असाधारण समझता है। वह शेक्सपियर, टॉलस्टॉय तथा गोर्की टैगोर को हेय समझता है। वह प्रकट में स्वयं को अदना इंसान कहता है और उसकी दृष्टि में आप जानते हैं या शायद नहीं जानते कि जीनियस एक व्यक्ति नहीं होता, वह एक फिनोमेना होता है, एक परिस्थिति जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। उसका एक रेडिएशन, एक प्रकाश होता है। उस रेडिएशन का अनुमान करके चेहरे की लकीरों से, उसके हाव भाव से या उसकी आंखों से नहीं होता। 1 उस व्यक्ति का कहना है कि वह एक ऐसे फिनोमेना से परिचित है। उसमें सचमुच वह चीज है जो दूसरों को ऊंचा उठा सकती है। मैं तब उसका रेडिएशन देख सकता हूँ, उसके अंदर की हलचल महसूस कर सकता हूँ। जिस तरह अभी अभी वह कबूतर पंख फड़फड़ा रहा था, उसी तरह उसकी आत्मा में हर समय एक फड़फड़ाहट, एक छटपटाहट भरी रहती है। भूख इसने भी देखी है और मुझसे कहीं ज्यादा भूख उसने देखी है, परंतु मैंने उसे जरा भी विचलित और व्याकुल होते हुए नहीं देखा। 2 इस प्रकार जीनियस अपने परिचित का विस्तृत वर्णन करके यह कहकर कि वह मेरा इनर सेल्फ है, वहां से चला जाता है। यह कहानी भूख से पीड़ित, परिस्थितियों से हार न मानने वाले व्यक्ति की जिंदगी को कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त करती है। यह उन कहानियों में से है जिनमें भीतर के टूटन और जकड़न को बाहरी दिखावे से भरना चाहता है। जख्म राकेश की प्रसिद्ध कहानी है। इसमें एक ऐसे व्यक्ति की गाथा है जिसका अहम बहुत प्रबल है। यह झुकना नहीं जानता, धीरे धीरे टूटता जाता है। इस टूटन की खनक भी कोई सुने यह उसे गवारा नहीं। वह पीकर परेशानी की हालत में मित्र के साथ कहीं जाना चाहता है। वह अधिक पीकर बहुत खुश होता है। वह कहीं जाकर दोस्त को सिर्फ यह बताना चाहता है कि वे और दोनों अब दोस्त नहीं हैं। दोस्त उसे अच्छी तरह जानता है और उसकी बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं लेता है। नोट: एक, वारिस, जीनियस, पृष्ठ 222, दो, वारिस, जीनियस, पृष्ठ 223। वह दोस्त से भी इस तरह की बातें करता है जैसे उससे उसकी पुरानी दुश्मनी है। पृष्ठ 86। तुम्हारी बुशर्ट पर ये दाग कैसे हैं? मैंने पूछा। उसने भी एक नज़र इन दागों पर डाली, ऐसे जैसे उन्हें पहली बार देख रहा हो। कैसे हैं? उसने ऐसे कहा जैसे मैंने उस पर कोई इल्ज़ाम लगाया हो। हाथ कट गया था, उसी के दाग होंगे। हाथ कैसे कट गया? उसका चेहरा कस गया। कैसे कट गया? वह बोला, कैसे भी कटा हो, तुम्हें इससे क्या? वह अनेक बार अच्छी सी लड़की देखकर शादी करने का निश्चय करता है क्योंकि वह अपना अकेलापन उसके लिए असह्य है। उसका अनेक बार अनेक लोगों से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा भी हुआ है। वह बिना किसी लाग लपेट के सब बातें कहने की क्षमता रखता है। उसका अधिकतर प्रेम विवाहित स्त्रियों के साथ ही होता था। वह जिंदगी के विषय में बड़े बड़े मंसूबे बांधता था। वह कभी नौकरी लगी होने पर कहता, नहीं, मैं तुम लोगों की तरह नहीं जी सकता, मैं अपने वक्त का हिस्सा नहीं, उसका निगहबान हूँ। एक, लंबी बेकारी के दौरान वह कहता, मुझे समझ आता है कि मैं बिल्कुल कट गया हूँ, हर चीज़ से बहुत दूर हो गया हूँ। दो, इस तरह उसका बेकारी के दौरान सबसे कट जाना बहुत स्वाभाविक है। राकेश को मालूम था कि बेरोजगारी मनुष्य को क्या से क्या बना देती है, अतः अपने अनुभूत सत्य को उन्होंने इस कहानी में सशक्तता के साथ अभिव्यक्ति दी है। नौकरी छूटने पर व्यक्ति अपने को अशक्त मानते हुए भी स्वीकार करना नहीं चाहता, उसका अहम उसे झुकने नहीं देता है। जख्म कहानी का नायक अपने ढंग से जीने का कायल है, किंतु परिवेश में अकेलेपन के बोझ से दबा हुआ है। कभी वह नौकरी करता है तो कभी बेकारी भोगता है। जीवन में आए अकेलेपन को वह शादी से भरना चाहता है। वह बार बार अपने इस निर्णय को दोहराता हुआ भी विवाह नहीं करता है। उसकी भटकन व अकेली स्थिति जीवन की व्यस्तता के कारण है। वह टूटा हुआ और बिखरा हुआ तो है, किंतु इस सब के लिए व्यवस्था जिम्मेदार है। कहानी में चित्रित परिवेश इसे उजागर करता है। जख्म के नायक का चिंतन साधारण न होकर असाधारण है। सामाजिक व्यवस्था से टूटा हुआ और अकेला यह नायक वक्त का निगहबान है, क्योंकि वह जीता नहीं है, देखता है। क्योंकि जीना अपने में घटिया चीज है। जीने के नाम पर तो पेड़ पौधे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। तीन, नोट: एक, वारिस, जख्म, पृष्ठ 230, दो, वही, पृष्ठ 233, तीन, वही, पृष्ठ 233। पृष्ठ 87। जख्म के नायक का व्यक्तित्व अस्तित्विक संदर्भों में भी देखा परखा जा सकता है। भयावह परिवेश में घिरकर और अकेलेपन से दबकर टूटता हुआ वह जिजीविषा से युक्त है। उसका यह चाहना और कहना कि पर मैं तुम्हें इतना बता दूं कि मुझे कम से कम 20 साल और जीना है। मैं तुम्हारे या दूसरे लोगों के बारे में नहीं कह सकता, पर अपने बारे में कह सकता हूं कि मुझे जरूर जीना है। एक, यह कथन उसकी अस्तित्विक दौड़ को स्पष्ट करता है। ऐसा लगता है कि जख्म यहाँ हाथ में नहीं अपितु उसके मूल अस्तित्व रूप में भी है, जिससे कचोट और पीड़ा बाहरी जख्म को महसूस ही नहीं होने देती। असल में बाहरी जख्म तो उतना नहीं है जितना कि भीतरी। यही कारण है कि बड़े शहरों की भीड़ में इस व्यक्ति का चेहरा यह इशारा करता है कि आज जीवन कितना जड़, निष्क्रिय अर्थहीन और अकेलेपन से भर गया है। परिवेश से कटकर इंसान कैसा बेकार हो गया है, इस बोध को यह कहानी और भी गहरा उतार सकती थी यदि राकेश ने थोड़ा विवरणों और एक जैसे कथनों की आवृत्ति से बचने का प्रयास किया होता। यही कहानी की वह कमजोरी है जो डॉक्टर नामवर सिंह को यह कहने को विवश करती है कि इसमें दर्शक का सत्य है, दृष्टा का नहीं। दो, और डॉक्टर मदान को यह कहने को प्रेरित करती है कि यदि कहानी में मित कथनों से काम लिया जाता तो यह अधिक सशक्त हो सकती थी। तीन, इस कहानी में सांकेतिक संदर्भों में बुनावट कम, दिखावटी विवरण अधिक है, फिर भी यह सच है कि यह टूटे और बिखरे हुए उस व्यक्ति की कहानी है जो अकेलापन तो झेल रहा है पर अपने अस्तित्व के प्रति इतना जागरूक है कि यह भी कह देता है, मेरी मौजूदगी में वह मेरे सिवा किसी और के बारे में सोचे या मुझसे उसका जिक्र करे मुझे बर्दाश्त नहीं है। चार, वारिस अंग्रेजी के एक ऐसे मास्टर की कहानी है जो आर्थिक अभावों की चक्की में पिसकर न केवल जर्जर हो गया है अपितु बेकार और बेमानी भी हो गया है। अपनी जमा पूंजी या प्रतिभा के गवाह कुछ कागज उसके पास है जो उसकी पूंजी है, लेकिन उसे कद्रदान नहीं मिलता है। वह बहुत लगन के साथ मैट्रिक के दो बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता है। नोट, एक वारिस जख्म पृष्ठ 237। दो, डॉक्टर नामवर सिंह नई कहानी सफलता और सार्थकता नामक निबंध नई कहानी संदर्भ और प्रकृति में संकलित पृष्ठ 71। तीन, डॉक्टर मदान हिंदी कहानी पृष्ठ 118। चार, वारिस जख्म पृष्ठ 233। पृष्ठ 88, वह एक वेतनभोगी मास्टर नहीं अपितु एक कर्मठ स्नेहिल साहित्यिक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति भी है। वह निश्चित समय से अधिक बच्चों को पढ़ाता है। उसका निवास स्थान दरिद्रता का गवाह था। अपनी जिंदगी की पूंजी जो कुछ लेखों के रूप में थी उसे उन्होंने उन शिष्यों को समर्पित कर दिया जो उसका महत्व नहीं जान सके। कैसा क्रूर व्यंग है प्रकृति का कि साहित्य की अमूल्य रचनाओं की बच्चे नाव बनाकर खेलते रहे और वह साहित्यकार संसार में उपेक्षित और अनजान ही रह गया। विवश, पीड़ित, टूटे हुए और अकेलेपन के बोध को गहराने वाली यह राकेश की अच्छी कहानियों में से एक है। दुराहा का केसरी निश्चय नहीं कर पाता कि उसे कौन से रास्ते पर चलना चाहिए। उसके अंदर की जलन भी कभी नहीं बुझती है। नए वर्ष के दिन श्यामा का हस्तलिखित पत्र उसे पुराने वर्ष की स्मृतियों में ले जाता है। उसे लगता है कि स्त्री का रूप बहुत जल्दी बदल जाता है। श्यामा के साथ उसकी सहानुभूति को पूर्णिमा ने गलत समझा, यह बात उसे कुरेदती रही। वह पूर्णिमा के व्यंग की अवहेलना करके श्यामा के बुलाने पर उसके यहाँ गया। कुछ ही दिन में उसे समझ भी गया वह श्यामा के साथ सहानुभूति होने के कारण सबके व्यंग बाणों का निशाना बना रहा, लेकिन श्यामा उसे बिना बताए शील के साथ चली गई और उसने भी इस संबंध को झटके से काट कर फेंक दिया। यहाँ स्त्री पुरुष संबंधों को यथार्थ के ठोस धरातल पर रखा गया है। इसमें केसरी की व्यथा पूंजीभूत हो उठी है। धुंधला दीप का केसरी अपनी उदासी दूर करने रेस्ट्रा में जाता है। उसकी जेब में राधा और नरेंद्र का विवाह का चित्र है। उनके विवाह की प्रतिक्रिया इस रूप में होती है, मन झुंझलाया, हो गया है विवाह तो हुआ करे, रोज ही होते हैं विवाह। रद्दी लिपियों को ढकने के लिए चमकीले मोहरबंद लिफाफे। एक, वह इतनी पीता है कि नशा बहुत तीव्र हो जाता है। वह घूमने जाता है तो उसे लगता है कि सबके बीच घिर कर भी वह अकेला है। वह सोचता है कि उसका संसार से अलग अस्तित्व है और उसे केवल अपना जीवन जीना है। ऐसी मनः स्थितियों में वह दोस्तों के साथ बैठकर और पीता है। वह राधा और नरेंद्र का एक ऐसा त्रिकोण था जिसमें सभी अपने अपने व्यक्तित्व से दूसरे को प्रभावित करना चाहते थे। केसरी को अपनेपन का मान है, राधा अपनी इच्छानुकूल उसे चलाना चाहती थी, उसके अनुसार स्वयं को बहलाना नहीं चाहती थी। राधा उसके और श्यामा के संबंधों को लेकर शंका करती थी और वह सीधा सपाट उत्तर देता था। राधा उस सच्चाई को नहीं सहन कर पाती। केसरी फिर अकेली आवारा जिंदगी बिताने को विवश हो जाता है। वस्तुतः केसरी के जीवन में न केवल ऊब है वरन अकेलापन भी है, जो कहानी के प्रारंभ में ही स्पष्ट हो जाता है। नोट एक, क्वार्टर, धुंधला दीप, पृष्ठ 117, पृष्ठ 89। अपनी उदासी को वह हर तरह से दूर करना चाहता है, किंतु वह बढ़ती जाती है और जीवन निरुद्देश्य हो जाता है। लक्ष्यहीन के केसरी की जिंदगी भी आवारा, अकेले टूटे छूटे व्यक्तित्व व्यक्ति की जिंदगी है। उसके दोस्तों का ख्याल है कि वह किसी भी भद्र लड़की से परिचय का अधिकारी नहीं है। वह अपनी सहपाठिनी के यहाँ रात्रि भोज के लिए जाता है। वह उससे आत्मीयता से मिलती है तथा उसे समझने का दावा करती है। वहाँ मिसेस वर्मा से उसका परिचय होता है। वह स्पष्ट रूप से कह देता है कि वह उनके विचारों का समर्थक नहीं है। वहीं मंजुला भी उससे मिलती है। मंजुला उससे प्रभावित दिखती है तथा अपनी गाड़ी में उसको घर छोड़ देती है। जब वह बताता है कि वह चंद्रहास में रहता है, मंजुला कहती है कि वही कोई केसरी भी रहता है। उसके विषय में उसने सुना है कि वह काफी सनकी, बददिमाग और व्यवहार शून्य व्यक्ति है। वह नहीं जानती कि उसका साथी ही वह व्यक्ति है। यह कहानी इस तथ्य को व्यंजित करती है कि किसी व्यक्ति का सही मूल्यांकन पूर्वाग्रहों से युक्त होकर नहीं किया जा सकता है। धुंधला दीप का केसरी यदि अकेलेपन से पीड़ित है, तो लक्ष्यहीन का केसरी निरर्थकता बोध से। एक अजीब इत्तेफाक है कि राकेश की इन तीनों कहानियों के पात्र केसरी नाम के व्यक्ति हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि तीनों केसरी एक ही व्यक्ति का विकसित रूप है। दोराहा का केसरी जीवन में मिली असफलता से पीड़ा बटोरता हुआ धुंधला दीप में अधिक उदास और बेगाना हो जाता है और हल्की सी किरण पाकर फिर पराजित होता हुआ टूट जाता है। पीड़ा, उदासी, बेगानापन और अनंत वह अंततः वह निरर्थकता बोध से भर जाता है। ये सभी पात्र जीवन में हारे, असफल, टूटे और उबे हुए हैं। इन सभी में कहीं ना कहीं अपने लिए एक निष्प्रयोज्यता का भाव है जो उन्हें अकेलेपन से जोड़ देता है। शीर्षक के अंतर्गत अब तक विवेचित पुरुष परिवेश से कटकर यंत्रणा भोगते हुए अकेलेपन का बोध जगाने वाले पात्र हैं। राकेश की कहानी में आए पात्रों में नारी पात्र भी अकेलेपन के बोझ से पीड़ित है। इनमें वे नारियां आती हैं जो अतृप्ति में जी रही हैं, प्रणयांकाक्षिणी हैं और इस क्षेत्र में मिली असफलता ने उन्हें न केवल निराश और उदास और अकेला छोड़ दिया है, अपितु भीतर ही भीतर तोड़ भी दिया है, बिखरने पर विवश भी कर दिया है। इन नारियों में एक वर्ग तो उन नारियों का है जो अपनी कुरूपता व भद्दी शक्ल के कारण उपेक्षिताओं का जीवन बिताती हुई कुंठित हैं। इनमें जीवन का कोई भी चिन्ह शेष नहीं दिखाई देता। इनका व्यवहार इनके भीतर की रिक्तता को स्पष्ट कर देता है। मिस पाल और सीमाएं कहानियों की नारियां ऐसी ही हैं इसके अतिरिक्त दूसरा वर्ग उन स्त्रियों का है जो समय के थपेड़े सहते सहते टूट चुकी हैं। पृष्ठ 90, विरक्ति और रिक्तता का एहसास लिए जैसे तैसे जी रही हैं। आकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति का प्रभाव और परिवेश से जुड़े रहने की विवशता ने इन नारियों की टूटन को और अधिक बढ़ा दिया है। आखिरी सामान की मिसेस भंडारी, सीमाए की उमा और उर्मिल जीवन की नारी, ऐसी ही विवश और टूटी व बिखरी हुई नारियां हैं। सुहागिने की मनोरमा को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। मिस पाल, मिस पाल राकेश की प्रतिनिधि कहानियों में से एक है। यह एक ऐसी नारी की कहानी है जिसे समाज में दूसरों के उपहास का पात्र बनना पड़ा। उसके मोटापे और कुरूपता के कारण जो ग्रंथि उसके मन में बन गई, उसने उसे किसी भी सहज जीवन को बिताने नहीं दिया। वह अपने दफ्तर के साथियों से परेशान है। उसकी दृष्टि में वे लोग ओछे और बेईमान हैं। वह उनके स्वार्थी स्वभाव की निंदा करती थी, लेकिन उसकी परेशानी का वास्तविक कारण ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा उसके रंग रूप पर टिप्पणी करना था। यह यथासंभव अपना मोटापा कम दिखाने एवं रंग रूप निखारने का प्रयत्न करती है, लेकिन जब कोई कहता, मिस पाल, इस नई कमीज का डिजाइन बहुत अच्छा है, आज तो गजब ढा रही हो तुम। बुखारिया कहता, आजकल मिस पाल पहले से स्लिम भी तो हो रही हैं। एक, तब उसका मन बहुत दुखी हो जाता। इस प्रकार वह दफ्तर के अन्य लोगों के बीच रहते हुए भी बहुत अकेलापन महसूस करती हैं। इसी कारण वह ऑफिस से बाहर भी किसी से किसी प्रकार का संपर्क नहीं रखती है। ऑफिस के एक कर्मचारी रणजीत के सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के कारण वह उसे यदा कदा मिलकर अपने मन की बात कह पाती थी। ऐसी ही मनस्थिति में मिस पाल अपनी नौकरी छोड़कर बिना किसी को बताए मनाली के पास एक छोटे से गांव में अकेली जिंदगी बिताने चली जाती है। किंतु जिसके हिस्से में मात्र ऊब और अकेलापन हो, वह सुखी कैसे रह सकता है? मनाली की जिंदगी स्वतंत्र जिंदगी भी तो उसकी उदासी को दूर नहीं कर सकी। वहां अचानक जब रणजीत से मुलाकात होती है, तो वह पुनः दिल्ली की बातें करने लगती है। उसके मन की यह ग्रंथि अभी तक दूर नहीं हो सकी कि उसके साथ ही उसके साथ सहज प्रेम व व्यवहार नहीं करते थे तथा उसके मोटापे और रंग रूप का मजाक उड़ाते थे। प्रकट उसमें वह उनके इस व्यवहार को महत्व नहीं देना चाहती, किंतु उसके मन में इसका गहरा क्षोभ भी है। यही उसके व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता है। राकेश ने मिस पाल कहानी में एक भद्दी और मोटी स्त्री की संवेदनशीलता और तत्संबंधित विडंबना को सशक्त ढंग से प्रस्तुत किया है। नोट एक, क्वार्टर, मिस पाल, पृष्ठ 14, पृष्ठ 91। परिवेश के दबाव, वहशीपन और अहवानियत भरे स्वभाव से व्यथित व संतरस्त मिस पाल सब कहीं से कट कर अकेलेपन को जीती नहीं बल्कि झेलती है। कारण न तो उसके पास रूप है, न मोहब्बत है और दौलत व शोहरत भी नहीं है। ये ही तो किसी भी स्त्री की कुल जमा पूंजी होती है। जाहिर है कि मिस पाल को ये सब तो क्या, इसमें से एक भी प्राप्त नहीं है। वह नौकरी पेशा औरत है, पर अपने दफ्तरी परिवेश को न झेल पाने के कारण वह नौकरी छोड़कर पहाड़ पर चली जाती है। देह की सीमाहीन विस्तृति और चेहरे की रंगहीन छवि उसके लिए अभिशाप है। अभिशाप ग्रस्त मिस पाल अपने खालीपन को भरने के लिए संगीत कला व चित्रकला में कुछ सार्थकता पाने का श्रम उठाती है, किंतु वहां भी असफल रहती है। बिखरे मन और फैले तन को लेकर वह जीवन के विडंबनाओं का भार ढोती रहती है। सारी कहानी में मिस पाल की अभिशप्त नियति, ऊब, उदासी, आत्मकेंद्रित स्थिति और अकेलेपन का गहरा बोध उनके पीड़ित, आत्मपीड़ित और संतरस्त जीवन को ही प्रमाणित करता है। उनके जीवन और सृजन में तनाव का बिंदु उभरा है और उसी बिंदु पर कहानी गहरी हो गई है। मिस पाल का एकांत में लौट जाना, अतिथि से कट जाने की कोशिश करना, दो लड़कियों की खुसुर फुसुर में उसके आदमी या औरत होने का संदेह का संकेत, उनको निकट आकर देखने की दावत, पहाड़ी बालकों की सुंदरता को आंखों को आंखें झपकाकर देखना आदि इस तनाव को कसते हैं और गहराते हैं। एक, मिस पाल के जीवन की निरसता उनके अस्त व्यस्त स्वभाव व जीवन से मिलकर भी और गहरी हो गई है। वे लापरवाही से खाती पीती है। उनके ये वाक्य, यह सब्जी मैंने परसों बनाई थी, रोज बनाने का उत्साह भी तो नहीं है, कई बार तो सप्ताह भर का खाना एक साथ ही बना लेती हूँ। संदूक में 25-30 खुश्क चपातियाँ पड़ी थीं, सूख कर कई उनकी तरह की आकृतियाँ धारण कर ली थीं। 2, उनके नीरस रिक्त और निरर्थक जीवन का बोध कराते हैं। यूं वे अपने अस्त व्यस्त और निरर्थक जीवन को पहचानती है तथा यह बोध उन्हें और खाली करता जाता है। इस खालीपन को उनके ये वाक्य भी गहरा देते हैं, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ रणजीत, हर लिहाज से मैं सोचती हूँ रणजीत कि मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं। 3, कहने की आवश्यकता नहीं कि मिस पाल की कुंठा और ट्रेजेडी को राकेश ने बड़े कलापूर्ण और सूक्ष्म ब्यौरों से उजागर किया है। नोट 1, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, हिंदी कहानी, पृष्ठ 117। 2, क्वार्टर, मिस पाल, पृष्ठ 24-25। 3, क्वार्टर, वही, पृष्ठ 30। पृष्ठ 92, यह बड़ी सुंदर कहानी है। नज़ाकत और नफासत से राकेश ने मंटो की कहानी बू की तरह इसे लिखा है। सीमाएं, हीन भावना से ग्रस्त एक लड़की की कहानी है। उसे दुख है, वह सुंदर से सुंदर वस्त्र, अच्छे से अच्छा गहना भी उस पर नहीं फपता। अच्छे वस्त्र पहनकर बनाव श्रृंगार करके उसे अपनी कुरूपता और दुखी करती है। वह अपनी सखी के साथ एक विवाहोत्सव में जाती है। वहाँ उसकी हीन भावना अत्यंत प्रबल हो जाती है और वह अत्यंत निराश वहाँ से लौटती है। मंदिर में जब एक युवक निरंतर उसकी ओर देखता है तो उसे लगता है कि उसमें भी कुछ नारीत्व है, उसकी ओर भी कोई प्रेम से निहार सकता है। भीड़ में यही युवक जब उसका स्पर्श करता है तो उसे अपूर्व आह्लाद का अनुभव होता है। लेकिन नियति की क्रूरता देखिए कि उस युवक का स्पर्श उसके कौमारे के कारण नहीं अपितु गले में पहनी जंजीर को उड़ा लेने के लिए था। हीन भावना से ग्रस्त प्यार की भूखी लड़की का मनोवैज्ञानिक चित्रण इस कहानी की विशेषता है। वस्तुतः उमा खाने पीने की हर सुविधा को पाकर भी जीवन में अभावग्रस्त थी। उसके अभाव को किसी चीज से नहीं भरा जा सकता था। रही सही खालीपन की मनस्थिति उसकी कुरूपता जनित हीन भावना को और भी खाली कर देते हैं। कहानी में उमा को का अस्त व्यस्त जीवन और उससे निष्पन्न व्यर्थता बोध को गहरा कहानी को नारी जाति से अकेलेपन से भर देती है। भूखे, उस सुंदर और आकर्षक युवती एवलीना की कथा है जिसे परिस्थितियों के क्रूर थपेड़ों ने निरंतर प्रहार करके जर्जरित कर दिया है। सड़क चलते नवयुवक, होटल का मैनेजर, ढाबे वाला, सभी उसकी विवशता का लाभ उठाना चाहते हैं। वह आर्थिक अभाव में भी अपना स्वाभिमान बनाए रखती है तथा अपने और अपने बच्चे के लिए किसी की दया नहीं चाहती। उसने अंग्रेज होते हुए सत्यपाल नामक पंजाबी युवक से विवाह किया। सत्यपाल अच्छा चित्रकार होते हुए भी धन कमाने में सफल नहीं हो सका। चिंता और संघर्ष के कारण जब उसे टीबी हो गई तो एवलीना उसे शिमला ले आई और तन मन से उसकी देखभाल करने लगी। वह उसके चित्र बेचना चाहती है पर उनका खरीदार नहीं मिलता है। पति की मृत्यु, आर्थिक संकट और बच्चे का दायित्व उसे बिल्कुल ही तोड़ कर रख देते हैं। वह अपने बच्चे की छोटी छोटी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाती। जहां कहीं वह जाती है लोग उसके यौवन और सौंदर्य पर छींटाकशी करते हैं, उसके यौवन का सौदा करना चाहते हैं, किंतु वह कभी परिस्थिति से समझौता नहीं करती। पृष्ठ 93, उसकी आशा और उसका विश्वास उसे हर संघर्ष का सामना करने की शक्ति देते हैं। आखिरी सामान एक ऐसी आकर्षक युवती की कथा है जिसे समाज में पर्याप्त प्रशंसा और सम्मान मिलता है। वह मिसेस भंडारी जहाँ भी जाती हैं उस लोग उसके रूप गुण पर मुग्ध हो जाते हैं। उसके पति को उस पर गर्व है, लेकिन वह अपने पति की महत्वाकांक्षा पूर्ति के लिए उससे उसके अधिकारी की वासना पूर्ति का साधन बनने को तैयार नहीं है। परिणामतः अधिकारी के रुष्ट होने पर जब पति जेल चले जाते हैं तो घर की हर वस्तु नीलाम हो जाती है। आखिर में उसे नीचे बुलाया जाता है तो वह अनुभव करती है सीढ़ियां उतरते हुए उन्हें लगा जैसे वे आप नहीं उतर रही, घर का आखिरी सामान नीचे पहुंचाया जा रहा है। एक वास्तव में मिसेस बेला भंडारी का यह रूप एक बिखरी हुई नारी का रूप है जो अपने परिवेश के वहशीपन से संतरस्त तो है किंतु अपने अस्तित्व रक्षण के लिए प्रयत्नशील भी बनी रहती है। वह अपने इस प्रयत्न में अकेला अनुभव करती है, क्यों न करे जब उसका परिवेश ही ऐसा है और तो और उसका पति भी। वह अकेलेपन के क्षणों में कुलबुलाती है, व्यथित रहती है किंतु गिरती नहीं है, उनका अकेलापन बढ़ता जाता है। सुबह नाश्ते के समय भी उनसे बातचीत नहीं होती है, किसी चाय पार्टी में साथ जाना पड़ता है तो सारा समय खिंचाव बना रहता है। मिस्टर भंडारी 1200 की नौकरी पाने का मंसूबा पूरा नहीं हुआ था। वे सोचती थीं कि क्या इसकी वजह वही है। दो, मिसेस भंडारी का पीड़ा बोध और अकेलापन, पति की गिरफ्तारी, एक एक सामान की नीलामी और आड़े वक्त में उनके सहपाठी सुधीर की अपेक्षा से और गहरा हो जाता है। राकेश ने उनके अकेलेपन को बड़ी ईमानदारी से अभिव्यक्ति दी है। उर्मिल जीवन की नारी का विवाह उसकी जीजी की मौत के एक महीने बाद उसके जीजा से हो जाता है। कभी जीजा के बलपूर्वक घूमने पर उसने थप्पड़ मार दिया था, लेकिन अब उनकी पत्नी है। दो हाथों द्वारा जकड़े जाने पर उसने आंखें मूंद ली और दो मोटे मोटे होंठ, नाक के लंबे बाल और विचित्र सी गंध, निकट और निकट, आंखों के दो गहरे गड्ढे, नीरा हिचकिचाई, चाहा बाहें झटक दे और जोर से तमाचा लगाए जिससे सारा वातावरण झन्ना उठे, मगर हाथ नहीं उठ सका। आज वह नासमझ बालिका नहीं, समझदार युवती है। अपनी विवशताओं को पी जाने वाली नारी की यह कहानी बहुत मर्म स्पर्शी है तथा पाठक को सोचने के लिए विवश करती है। पृष्ठ 94। नीरा की मनस्थिति का चित्रण अत्यंत मनोवैज्ञानिक तथा स्वाभाविक है। नन्ही एक भावना प्रधान कहानी है जिसमें एक नवयौवना की भावनाओं का हृदयस्पर्शी चित्रण हुआ है। वह ब्याह कर पहली बार ससुराल आती है तो उसके पति का दूसरा ब्याह होने के कारण उसका स्वागत सत्कार नहीं किया जाता और उसके पति की लड़की उसे माँ कहकर संबोधित करती है। जिसे अभी तक बेटी सुनने का अभ्यास था वह अब एकाएक इस संबोधन को स्वीकार नहीं पाती और तीव्र ज्वर से ग्रस्त हो जाती है। एक घटना एक विदुषी एवं प्रतिभा संपन्न युवती की कथा है। आर्थिक अभाव एवं निरंतर संघर्ष उसे जीवन में आगे बढ़ने की सुविधा नहीं देते हैं। उसकी सारी प्रतिभा गरीबी के आवरण में छिप जाती है। वह अपने पिता के अमूल्य ग्रंथों को कौड़ियों के मोल बेचने को विवश होती है। यह एक अत्यंत प्रभावशाली एवं मार्मिक कहानी है तथा मानव के विकास में परिस्थितियों के महत्व को रेखांकित करती है। कटे हुई पतंगे की राजकरनी की आंखों से घायल इतिहास झांकता है जो बिल्कुल बाधन रीछनी जैसी उपाधियों से विभूषित थी। वक्त की मार सहकर गालियां भी चुपचाप खाने को विवश हो जाती है, लेकिन इस तरह कहानी की राजकरनी सामाजिक व्यंग बाणों का निशाना बनकर आत्महत्या करने पर विवश होती है। अन्य परिवार उसके प्रेम प्रसंगों में रस लेते हैं तथा दिखावटी सहानुभूति भी व्यक्त करते जाते हैं। स्कूल में उसको लड़कियों में घुल मिलकर रहने पर भी टीका टिप्पणी की जाती थी, साथ ही उसके गुणों की भी चर्चा करते थे कि वह काम में बहुत अच्छी थी, मेहनत से पढ़ाती थी और सफाई की देखभाल भी ठीक से कर लेती थी। उसे अनेक बार अकारण तिरस्कार और अपमान सहना पड़ता था। इन्हीं कारणों से उसने विवश होकर आत्महत्या की।